ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नाष्टपयेष् विदेशो नित्यं भगवद सेवया भगवदी उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी एते चमसा कलपुंसं कृष्णस्तु भगवन् स्वयं इन्द्रियार्व्याकुलं लोकं हृदयान्ते युगे युगे नाम संकेतनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणाम दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। हम श्रीमद् भागवतम से पढ़ रहे हैं। सप्तम स्कंद अध्याय 10 श्लोक संख्या 25 से 29 तक। तो पहले मैं 25 श्लोक 28 तक पढ़ रहा हूँ, इसके बाद 29 श्लोक साथ ही साथ उच्चारण करेंगे। प्रसादासुमुखं दृष्ट्वा ब्राह्मणरा हरिं हरिं स्तुत्वा वाग्भिः पवित्राभिः प्राह देवादिभिर्वृत। अनुवाद। अन्य देवताओं से गिरे हुए ब्रह्म जी का मुखमंडल चमक रहा था क्योंकि भगवान प्रसन्न थे, अतएव उन्होंने दिव्य शब्दों से भगवान की स्तुति की। श्री ब्रह्मो वाचा देवा देवा किल अध्यक्षा भूता भावना पूर्वजा दिश्यते निहता पापो लोक संतापनो सुरः। ब्रह्म जी ने कहा, हे देवताओं के परम स्वामी, हे समग्र ब्रह्मांड के अध्यक्ष, हे समस्त जीवों के वरदाता, हे आदि पुरुष, यह हमारा सौभाग्य है कि आपने इस पापी असुर को मार डाला जो समग्र ब्रह्मांड को दुख देने वाला था। तत्पर्य भगवद गीता में पूर्वजा शब्द का व्याख्या दी गई है। हम सर्वस्य प्रभवो मता सवम प्रवर्तते। ब्रह्म समेत सारे देवता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रकट होता है, अतएव समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद है। श्लोक संख्या 27। यो साउ लब्धा वरो मातो न बाध्यो मम सृष्टि भी तप योग बलो न समस्त निगमान अहन। इस असुर हिरण्यकशिपु ने मुझसे यह वरदान प्राप्त किया था कि वो मेरी सृष्टि में किसी भी जीव के द्वारा मारा नहीं जाएगा। इस आश्वासन के कारण तथा तपस्या और योग से प्राप्त बाल द्वारा वो अत्यंत गर्वित हो उठा और समस्त वैदिक आदेशों का उल्लंघन करने लगा। दिष्ट्या तत्तनया साधोर महाभगवतो अर्भक त्वाया विमोचितो मृत्योर दिष्ट्या तम समितो दुनां। सौभाग्य से हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद अब मृत्यु से बचा लिया गया, और यद्यपि वो अभी बालक है किंतु महाभगवत अब वो पूर्णतया आपके चरण कमलों की शरण में है। अभी श्लोक संख्या 29। एतद्वपुस्ते भगवान बोलिए दयात परमात्मना Sarvato Goptri Santrasan. Mityurapi Jigamsatam. Etadvapuste Bhagavan. Jayata Paramatmana. Sarvato Goptri Santrasan. Mrityurapi Jigamsatam. Etadvapuste Bhagavan. Jayata Paramatmana. Sarvato Goptri Santrasan. Mityurapi Jigamsatam. Etat. Ya. Vapu. Sharir. Te. Tumhara. Bhagavan. He Purna Purushottam Bhagavan. Dayata. Jo Dhyan Karta Hai. Paramatmana. Param Purushka. Sarvata. Sabhi Jagase. Goptri. Rakshak. Santrasat. Sabhi Prakar Ke Bhai Se. Mrityu Api. Yahan Tak Ki Mrityu Bhai Se Bhi. Jighamsatam. Yadi Shatru Bhi Irshya Kare. अनुवाद और तात्पर्य शिल ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद की अनुवाद हे ईश्वर हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आप परमात्मा है यदि कोई आपके दिव्य शरीर का ध्यान करता है आप सभी प्रकार के भाई से यहाँ तक कि असन मृत्यु भाई से भी उसकी रक्षा करता है तात्पर्य हर एक की मृत्यु निश्चित है क्योंकि कोई भी मृत्यु के हाथों से बच नहीं सकता यह मृत्यु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ही रूप है मृत्यु सर्वहारस चाहम किंतु भक्त हो जाने पर उसे सीमित आयु के अनुसार मरना नहीं होता हर एक की आयु सीमित है किंतु परमेश्वर कृपा होने से भक्त की आयु बढ़ सकती है क्योंकि भगवान किसी के भी कर्म फल को निरस्त कर सकता है कर्मान निदाहति किंतु च भक्ति बाजम यह ब्रह्म संहिता का कथन है भक्त कर्म नियमों के अधीन नहीं होता अतएव परमेश्वर की अहितु की कृपा से भक्त अपनी निर्धारित मृत्यु से भी बच सकता है ईश्वर मृत्यु भय से भी अपने भक्त की रक्षा करता है ओम ज्ञान तिमिरंदस्या ज्ञानंजन सलकया चक्षुरन्मीलितं येनम तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले Sayam Rupa Kadama Yam Dharati Sabarantikam Bandeham Sri Guru Sri Yadavada Gamalan Sri Gurand Vaishnavam Scha Sri Rupam Sagar Jatam Sagana Ragana Tanvitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Sri Vishakanvitam Scha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gope Shagubika Ganta Radha Kanta Namastade Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavane Shari Brishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Banchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhyeva Cha Paritanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Rama Ramo, Hare Hare. अभी ब्रह्म जी भगवान की गुणगान करते हैं। इसमें उल्लेख किया है कि प्रसाद सुमुखम दृष्टा, क्योंकि ब्रह्म जी भगवान की गुणगान कर रहा है, भगवान के सामने है, इसलिए उनका मुख मंडल चमक रहा था। यह हम देख सकते हैं, अगर कोई भगवान की सेवा कर रहा है, विशेष करके शुद्ध वैष्णव जैसे प्रभुपाद और उनके गुरु महाराज इत्यादि, उनके शरीर दिव्य है, और क्योंकि वे भगवान की सेवा में लीन है, जो सबके स्रोत है, जैसे कृष्ण भगवान ब्रह्मज्योति के स्रोत है, ब्रह्मज्योतियों के शरीर तेज है, और जब शुद्ध वैष्णव भगवान का स्मरण करता है, जो सबके दिल में स्थित है, क्योंकि उनकी दिल, उनकी भावना, चित्त शुद्ध है, इसलिए भगवान का तेज प्रकट हो जाता है शुद्ध वैष्णव के शरीर से मुखमंडल पे, और कृष्ण प्रेम निकलता है। प्रेम भक्ति या हो इत्याविद्यावि नशायते, हम गाते हैं गुरु के गुणगान में प्रतिदिन गुरु वंदना। तो ब्रह्म जी हमारे संप्रदाय के आदि गुरु है, भगवान श्री कृष्णा ब्रह्म जी को दिव्य दान ज्ञान दिए थे। ये उल्लेख किया है द्वितीय स्कंद में नवम अध्याय ये चतुश्लोकी, इसमें कहता है अहम एव सम एव अग्रे नान्यत् यत् सर्वसत् परम। मैं सृष्टि के पहले था, मैं भी हूं, और सृष्टि के बाद में भी मैं रहूंगा, उसी समय कुछ नहीं रहेगा अंत के। तो भगवान परम दयालु है, भगवान हमेशा आध्यात्मिक जगत में विराजमान है, सबके स्रोत है, स्वयं भगवान आदि पुरुष मूल रूप है, भगवान श्री कृष्णा यशोदा नंदन गोपीनाथ भगवान ही है, लेकिन गोप के रूप में है, ब्रज में विराज कर रहा है, उनके साथ उनके असंख्य नित्य सिद्ध परिकार है, और उनको भी नहीं मालूम है भगवान की योग माया के प्रभाव से कि कृष्ण भगवान है। और ये आध्यात्मिक जगत के सर्वोत्तम जगह है कृष्ण लोक, द्वारकापुरी मथुरापुरी और ब्रजधाम, और साथ ही साथ भी श्वेतद्वीप नवद्वीप जो श्री चैतन्य महाप्रभु के वास स्थान है, उनके धाम है, इसमें हमेशा लीला में लीन है। लेकिन जब ये भगत ये भौतिक जगत प्रकट हो जाता है भगवान की इच्छा से, भगवान की प्रेरणा से, और तब तो जो सबसे योग्य पूर्व सृष्टि के जीवात्मा ब्रह्म जी के पाद में आ जाता है, वो भगवान की कृपा से, भगवान की प्रेरणा से, भगवान के दिव्य ज्ञान देते हुए वे सृष्टि का पूरा कर सकता है ब्रह्मा जी, और दिव्य ज्ञान भी देते हैं। उन्होंने प्राप्त किया दिव्य ज्ञान भगवान श्री कृष्ण से और सरस्वती देवी से भी, ये गोपाल मंत्र मिल गया जो हमारे जो भक्त लोग जो दीक्षित है, जिन्होंने ब्रह्म दीक्षा मिल गया है, ये गोपाल मंत्र उच्चारण करता है प्रतिदिन, ये प्रसिद्ध मंत्र है। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान ब्रह्म जी को भी ब्रह्म गायत्री दिया, ये उनके वंशी बजाते हुए निकल गया और ब्रह्म जी के उनके चतुर्मुख ब्रह्म जी के कान में प्रवेश किया, और इसके फलस्वरूप भगवान का साक्षात दर्शन मिल गया। तपस्या करते हुए, मंत्रोच्चारण करते हुए साक्षात दर्शन मिल गया और अपना स्वरूप भी अनुभव किया है कि मैं कृष्ण के दासी हूँ, गोपी हूँ। लेकिन भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ये ब्रह्म समित के तत्पर्य में उन्होंने उल्लेख किया है, लेकिन सब कुछ अनुभव नहीं किया था शुरुआत में, सिर्फ अनुभव किया कि मैं एक गोपी हूँ, लेकिन अपना नाम जो है और कहाँ पर रहेंगे ब्रज में, ये उसी समय तो ज्ञात नहीं था। तो भगवान यहाँ पर नृसिंहदेव भगवान, तो भगवान के अलग अलग रूप है, तो प्रकट हो गया उनके भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए और उनके दुष्ट पिताजी को मार डालने के लिए आया है, मार डाला। इसके बाद तो प्रहलाद महाराज भी भगवान की कृपा से बहुत सुंदर श्लोक भगवान के गुणगान में उच्चारण किया थे, इससे संतुष्ट हो गया भगवान नृसिंहदेव। इसके बाद ब्रह्मा जी यहाँ पर बहुत सुंदर श्लोक उच्चारण करते हैं भगवान के गुणगान में और कहता है कि देव देवा, अब देव के देव है, अब परम स्वामी है और ये पूरा ब्रह्मांड के अध्यक्ष है और कहता है भी कि वास्तव में सब जीवों को आप वरदान देता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो देवता जो है वरदान देता है, ये भी दे सकता है, लेकिन वास्तव में भगवान की कृपा से दे सकता है वरदान। तो इसलिए यहाँ पर कहता है कि आप समस्त जीवन जीवों के वरदाता है, आदि पुरुष है, जैसे ब्रह्म समित उन्होंने उल्लेख किया है, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व करण करणम, परमेश्वर है। बहुत सारे भगवान के रूप हैं, तो विष्णु के अलग अलग नाम भी है, लेकिन आदि पुरुष मूल रूप स्वयं भगवान कृष्ण ही है, यशोदा नंदन गोपीनाथ। और ब्रह्म समिति के हर श्लोक में चौथा लाइन इसमें उल्लेख किया है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, हे गोविंदा, कृष्ण का दूसरा नाम है, भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे नाम है, उनके गुण के अनुसार, उनके संबंध के अनुसार और लीला के अनुसार है। तो गोविंद एक नाम है उनके जो, और गोपाल गो गाय और बच्चे का देखभाल करते पालन करता है, और इंद्रियों मतलब जब उनकी सेवा कर रहा है, भगवान की इंद्रियों संतुष्ट हो जाता है, वो तो आत्माराम है अब तक काम, लेकिन फिर भी अगर भक्त लोग सेवा कर रहे हैं तो संतुष्ट हो जाता है। जैसे पिताजी है उनके बच्चा है, तो बच्चे पिताजी के लिए क्या कर सकता है, पिताजी के पास सब कुछ है। लेकिन अगर पिताजी बच्चे को कुछ देता है तो पैसे पॉकेट मनी देता है, अगर कुछ इससे कुछ खरीदता है और पिताजी को देता है तो बहुत संतुष्ट हो जाता है। हाँ बच्चा मेरे को ये दिया है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, धन्यवाद कहता भी है। पिताजी ने दिया है लेकिन फिर भी वापिस मिलता है तो प्रेम से तो दिया है तो उनको बहुत अच्छा लगता। वैसे ही कृष्णा सर्वलोक महेश्वरम सबके उद्गम है, भुक्त रंग यज्ञ तापसम सर्वलोक महेश्वरम, सब कुछ कृष्ण का ही है। लेकिन अगर भक्त लोग भगवान कुछ कृष्ण को कुछ अर्पण करता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, प्रेम से प्रीति से, सरल चीज भी हो सकता है, फल फूल तुलसी पाते जल, तो संतुष्ट हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष है लेकिन परम दयालु है। और यहाँ पर कहता है कि हमारे सौभाग्य की बात है कि अब ये दुष्ट पापी आसु को मार डाला है आपने, जो पूरा ब्रह्मांड में दुख देने वाला था। तो ये देवता लोग तो ये भी भयभीत थे उनसे हिरण्यकशिपु से। तो नृसिंहदेव सबसे पहले ये प्रणाम राज जो उनके प्रिय वक्ता है, जो निरंतर उनके स्मरण करते थे, इसके लिए प्रसिद्ध है, भगवान का स्मरण करते थे निरंतर। तो ये प्रसिद्ध श्लोक उन्होंने पिताजी को बताए गए थे प्रहलाद महाराज को, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पर सेवनम आचनम वंदनम दस्यम सक्यम आत्मा निवेदनम। ये नवविध भक्ति के श्लोक है और हम भी ये मानते हैं और इसके अनुसार हम भी भजन कर रहे हैं, भगवान के बारे में श्रवण करता है, वैष्णव के मुख्य रूपिंद से जो हमने सुना है इसका गुणगान करता है और इसका फलस्वरूप इसका स्मरण भी कर सकता है, जो हमने सुना है जो हम बोलता है। अगर ना ही सुनते हैं और गुणगान ना ही करता है कृष्ण के, तब उनको स्मरण भी ना कर सकता है, संभव नहीं है। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, और जब उनके स्मरण कर सकते तब पार सेवनम, तब अच्छे तरह से उनके चरण कमलों की सेवा कर सकता है, अर्चनम तब ठाकुर जी की सेवा कर सकता है। इसमें भी उल्लेख किया है श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में श्लोक है, जो अच्छे तरह से भजन कर रहा है ये ठाकुर जी की सेवा कर सकता है, अन्यथा ना है। वंदनम स्ताव स्तुति अर्पण करना है, जैसे ब्रह्म संहिता पुरुष सूक्त इत्यादि पुजारी उच्चारण करता है, भक्त लोग भी कर सकता है। ये कम से कम जब आरती होती है तब कीर्तन में भाग लेना है और कम से कम महामंत्र को चरण करना है, गाना है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है, इसलिए तो ये महामंत्र कहलाता है। और श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग के अवतार जो राधा कृष्ण के भिन्न स्वरूप है, उन्होंने युग राम स्थापित किया है, ये कीर्तन है, नाम कीर्तन विशेष करके महामंत्र दिया है। बहुत सारे मंत्र है वैदिक साहित्य में, जैसे गायत्री मंत्र भी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मंत्र ये महामंत्र है। तो इसके महामंत्र जप करते हुए और मंदिर में भजन कीर्तन करते हुए महामंत्र के, तो तब भगवान संतुष्ट हो जाता है। लेकिन प्रेम से उच्चारण करना है महामंत्र, और दिल चित शुद्ध होना चाहिए, तब भगवान प्रकट हो जाता है, तब ग्रहण करता है हमारी सेवा। तो इसके बाद कहने लगा कि तो ये असुर हिरण्यकशिप मुझसे वरदान प्राप्त किया था कि इस भौतिक जगत में किसी भी जीव के द्वारा मारा नहीं जाएगा। तो इस आश्वासन के कारण वे बहुत तपस्या करते हुए, योग अभ्यास करते हुए बाल प्राप्त किया है, बहुत शक्तिशाली बन गया, और इससे तो पूरा ब्रह्मांड ये स्वर्गलोक में भी पहुंच गया और सब वहां से भाग गया, और तो सब भयभीत थे और तो गर्वित हो गया, और जो वैदिक शास्त्र जो है, आदेश जो है, जो हमको पालन करना है जब मनुष्य शरीर में है, उन्होंने यह सब आदेश का उल्लंघन करने लगा, तो नास्तिक थे, असुर थे। लेकिन भगवान की इच्छा से वास्तव में, और यों की भी लीला है कि प्रहलाद जो भगवान के शुद्ध वैष्णव है, ये हिरण्यकश्यप की पुत्र बन गया, और लेकिन क्योंकि लड़ाई तो होता है, युद्ध होता है असुर लोग और देवता के बीच में, सुर और असुर हमेशा इनके बीच में कुछ आजकल तो जनन आय होता है, क्योंकि इस भूमंडल में जो असुर जो है बहुत तुच्छ है, शक्तिशाली नहीं है, और इसलिए आजकल तो देवता लोग तो आराम से स्वर्गलोक में बैठ जाता है, लेकिन दूसरे समय जैसे सती युग में, द्वापर युग में, तृतीय युग में, विशेष करके सत्य और तृतीय युग में ये, और यहाँ पर हिरण्यकशिप की बात तो सती युग के है, तो शक्तिशाली बन जाता है और स्वर्गलोक की ओर जा सकता है, लेकिन आजकल संभव नहीं है। लोग कहता है आजकल भी तो 1968 अमेरिका में उन्होंने तो वहां पर रॉकेट भेज दिया चंद्रमा की ओर, उन्होंने भी घोषित किया वहां पर पहुंच गया है, लेकिन सही नहीं है, संभव नहीं है, कृत्रिम रूप से तो वहां पर नहीं जा सकता है रॉकेट से, स्पुतनिक से। जब योग अभ्यास करता है बहुत तपस्या करते करते वहां पर जा सकता है, लेकिन ये दुर्लभ है, लेकिन पूर्व ये जो सतयुग में संभव है, संभव है। तो भगवान की इच्छा से प्रहलाद महाराज पुत्र के रूप में हिरण्यकशिपुर ये दैत्य के परिवार में उनका जन्म हुआ, लेकिन युद्ध के कारण तो वहाँ से वो तपस्या करते हुए तो वहाँ से तो तपस्या के लिए गए, और उसी समय देवता लोग ने देखा कि हिरण्यकशिपु नहीं है, तो आक्रमण किया उनके महल पे, और उनके हिरण्यकशिपु की पत्नी यादव जो गर्भवती थी अपहरण किया, और स्वर्गलोक के लिए चले गया। तो वहाँ पर नरर मुनि बीच में आया और उनको रोक दिया, इंद्रदेव को, उनको बोला ये तो देखिए ये स्त्री है और ये गर्भवती है, और तो इंद्र ने बोला हाँ गर्भवती है, लेकिन उनके घर में एक असुर है जिसे उनके पिताजी है, तो इसलिए अभी तो जब जन्म के बाद देखता है और उनकी चतुर्थियों को मार डालने के लिए, लेकिन उन्होंने मना किया, नहीं ये उनके घर में एक वैष्णव है, परम वैष्णव है, इसलिए अब उनको नहीं ले सकता है हिरण्यकशिपु की पत्नी। तो उन्हें बोला मैं देखभाल करूंगा, ओके हमारे आश्रम में रहेंगे और इसके बाद जन्म देने के बाद पुत्र को मैं उनको शिक्षा दे दूंगा, और ऐसे भी किया है। और बाद में तो जब वापिस आया तो जब हिरण्यकशिपु सुन लिया कि नरेंद्र मुनि के आश्रम में उनकी पत्नी और बच्चा भी पैदा हो गया था, जब पंच वर्ष के आयु में आ गया तो नरेंद्र मुनि हिरण्यकशिपु की पत्नी को हिरण्यकशिपु को वापिस उनके पास पहुंचवाया, और इसके बाद पुत्र भी, और हिरण्यकशिपु को शिक्षा देने के लिए अपने वहां पर गुरुकुल में भेज दिया। तो और ये उनके जो शिक्षा जो होता है, जैसे आजकल में भी शिक्षा जो होता है विद्यालय में, इसमें तो दिव्य ज्ञान नहीं देता है, और वैदिक शास्त्र के जो शिक्षा जो है नहीं देता है, सिर्फ कैसे पैसे कमाना है, इस भौतिक जगह में आजकल क्या हो रहा है ये बताता है, और थोड़ा बहुत मतलब पढ़ना तो सीखना है, और मैथमेटिक्स भी है इत्यादि, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा नहीं देता है। और अगर कुछ बताता है दर्शन, इसमें नास्तिक दर्शन देता है, भगवान नहीं है, बिग बैंग थ्योरी है, शुरुआत में एक्सप्लोजन हो गया, इसके बाद सब प्रकट हो गया है, इसका कोई मतलब नहीं है वास्तव में, लेकिन वास्तव में भगवान की प्रेरणा से यह भौतिक जगत प्रकट हो जाता है, और भगवान की प्रतिनिधि ब्रह्मा जी के माध्यम से अलग अलग मनुष्य शरीर और पशु पक्षी के शरीर प्रकट हो गया है, इसमें प्रवेश कर रहा है जीवात्मा, देहधारी जीव। और इसमें उल्लेख किया है कि और प्रार्थना मतलब स्तुति उनके गुणगान करते हैं, और कहता है यहाँ पर भगवान को कि ये बालक है लेकिन ये एक महाभागवत है। महाभागवत तो अरब का है, आपके अरब का आपके बालक एक महाभागवत है, परम भक्त है, और आपके चरण कमलों मतलब यह है कि शुद्ध वैष्णव भगवान के चरण चरण कमलों में आश्रय लिया है, तो आश्रित है और भगवान की सेवा में लीन है। और प्रहलाद महाराज जिससे इसमें प्रसिद्ध है कि हमेशा भगवान का चिंतन कर रहे थे, तो ज्यादा सेवा नहीं करते थे लेकिन भगवान का चिंतन करते थे, भगवान का गुणगान भी करते थे दूसरे दोस्तों को, मित्र को, गुरुकुल में, और ये भी लगभग भक्त बन गए थे उनके प्रभाव से। और कहते हैं और हे ईश्वर आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो तीन पुरुषोत्तम है हमारे गौरी वैष्णव सिद्धांत के अनुसार, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान है, इसके बाद लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, और तीसरे है प्रेम पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु। लेकिन इनमें से सिर्फ दो है जो स्वयं भगवान है, ये कृष्ण चंद्र स्वयं भगवान है, एते चमसा कलम पुमसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु जो राधे कृष्ण के भिन्न स्वरूप है, उनको पुकारते हैं ये स्वयं भगवान है, हम नहीं कह सकते, नहीं कहता है कि रामचंद्र स्वयं भगवान है, भगवान है, पुरुषोत्तम है, लेकिन स्वयं भगवान सिर्फ कृष्ण ही है एवं श्री चैतन्य महाप्रभु। और कहते हैं अगर कोई आपके दिव्य शरीर का ध्यान करता है तो सभी प्रकार के भय से विमुख हो जाता है। और कृष्ण भी कहता है भगवद गीता में, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज, अहम् त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मा शुचः, चिंता मत करो। अर्जुन को कहता है मैं तुम्हारे रक्षा करूंगा, देखभाल करूंगा, जो भी कुछ चाहिए। कहते भी अनन्य चिंतन तमाम ये जन पा सते तेषां नित्यभुक्तयां योगक्षेमां वहामि अहम्। जो जो भी तेरे पास है ये रहेगा, और जो कुछ भी तुमको चाहिए मैं दे दूंगा। तो आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान की कृपा से आगे जा सकता है, और भौतिक दृष्टि से अगर हम कुछ चाहिए तो भगवान देता है। जैसे माता जी और पिताजी बच्चे को सब कुछ देता है, उनको विदेराई में बेचता है, साहित्य भी देता है, तो ये पढ़ाई में, इसके बाद खाना पीना का, जो कुछ भी चाहिए देता है, पूछने भी जरूरत नहीं है बच्चे को। वैसे ही भगवान से भी पूछना हमको ये चाहिए वो चाहिए जरूरत नहीं है, जो कुछ भी चाहिए है ये भगवान देता है। इससे जो परम भक्त जो है भजन करता है और उनकी कोई चिंता नहीं है कहाँ रहूंगा, प्रसाद क्या होगा, सब कुछ मिलता है। जैसे कोई महान व्यक्ति भी है, पुरुष वैष्णव है, जैसे मध्वाचार्य, ये भी भिक्षा नहीं मांगते थे, सिर्फ जप करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और तब भगवान की प्रेरणा से लोग भक्त को कुछ देता है, अगर नहीं देते भगवान खुद भी आता है। जैसे मधुवेंद्रपुरी को उन्होंने देखा कि दो दिन से किसी ने दिया ना है कुछ, तो खुद उनके सामने आया, गोप तो है लेकिन ऐसे करते हुए आया, जिसे उन्होंने नहीं समझ सकता था, उनको उन्होंने नहीं समझ लिया कि ये भगवान है मेरे सामने। गुप्त रूप में, गोप के रूप में, गोप ही है लेकिन गोप के रूप में आया, पहचान नहीं लिया कि ये भगवान है। तो बोला मेरे हमारे को यहाँ पर भेज दिया, सुना है कि आप यहाँ पर भजन कर रहे हैं और कई दिनों से कुछ पाया ना है प्रसाद, इसलिए मैं आपको ये दूध देना चाहता हूँ। अच्छा, देखते हैं, बहुत सुंदर लड़का है, ये अद्भुत लड़का है, लेकिन नहीं पहचान लिया कि ये भगवान श्री कृष्ण है। तो दूध ग्रहण किया और पीने लगे और मूर्छित हो गया, क्योंकि भगवान दिए गए यह दूध विशेष दूध है। अगर मान लीजिए को कुछ बनाता है कोई लोग और इसके बाद खा जाता है, ठीक है, इसका एक प्रकार के स्वाद है, अगर उनको आता है भोग बनाना लेकिन अगर भगवान को अर्पण करना है, सब्जी चावल चपाती रसगुल्ला रसमलाई हलवा दूध भी, तो स्वादिष्ट हो जाता है, क्योंकि भगवान ग्रहण किया है तो स्वादिष्ट हो जाता है और यूं की कृपा बन जाता है। अगर कोई ये लेता है तो ये भी आनंद का अनुभव कर सकता है, तो भाव विभोर होकर तो मूर्छित हो गया, और उन्होंने उसी समय अनुभव किया है कि ये भगवान श्री कृष्ण थे जो आया है। तो भगवान सब कुछ देता है जो हमको चाहिए। और मरे कृष्ण रख के, रख कृष्ण मरे के, अगर भगवान की रक्षा है उनको मार डालना संभव नहीं है। जैसे हिरण्यकशिप की कोशिश किया उनके ये सेवक के माध्यम से मार डालना उनके अपने पुत्र को, क्योंकि भगवान के भक्त थे, लेकिन संभव नहीं था, उनकी रक्षा किया था। अगर किसी को मार डालना भगवान तो दूसरे उनकी रक्षा नहीं कर सकता है, संभव नहीं है। तो इसलिए हमेशा भगवान के कृष्ण सेवा में रहना है, उनके चिंतन करना है निरंतर, तब भाई बिना भाई रह सकता है। जब अच्छा तरह से भजन करता है तो उनके स्वरूप का आनंद, मतलब स्वरूप के अनुभव भी कर सकते, परमानंद का अनुभव कर सकता है और समझ सकता है कि हम शरीर नहीं अपितु आत्मा है। और जो उस वस्त्र पे है, तो जैसे इसमें भी उल्लेख किया है, तो इस जन्म मृत्यु के चक्र के बाहर है वैष्णव। अगर चाहते भगवान तो अगर कुंडली के अनुसार 70 साल तक रहना है, लेकिन अगर सेवा में लीन है भगवान की इच्छा है 100 वर्ष तक रह सकता है। एक प्रॉपर के गुरु भाई थे, प्रसिद्ध भक्त भक्ति सिद्धांत के शिष्य, और ये सब गौरी मार के जो मंदिर के ठाकुर जी के प्रतिष्ठा उन्होंने किए थे, उन कुंडली के अनुसार उनके 25 वर्ष के समय मृत्यु उनके मृत्यु के समय था 25 साल के। लेकिन इससे पहले भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के शरण में आ गया और भजन किया है और 100 वर्ष तक जीवित है। 102 जब 102 साल के थे तब अपना शरीर छोड़ दिया। लेकिन कभी कभी जो क्योंकि शुद्ध वैष्णव हमेशा भगवान के आदेश अनुसार सब कुछ कर रहा है और लगभग तो भगवान देखता है कि अच्छा तरह से रह सकते और सेवा कर सकता है, लेकिन भगवान की इच्छा के अनुसार सब कुछ कर रहा है। वो कभी कभी जल्दी भी चले जाता है, जिसे कहा जाता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद तोरसा, क्योंकि उनके शिष्य आपस में लड़ाई कर रहे हैं कभी कभी, तो कहा जाता है कि अपना शरीर जल्दी छोड़ दिया है। लेकिन जो भी है तो शुद्ध वैष्णव की कोई चिंतन नहीं है, कोई भाई नहीं है, क्योंकि हमेशा भगवान की सेवा में लीन है, आध्यात्मिक वस्त्र पे स्थित है। तो कोई भौतिक दुख नहीं है, भौतिक भाई नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन ये दूसरी बात है कि हमको समझना चाहिए कि भजन करते हुए भी तो ये समस्या आ जाता है, ये स्वाभाविक है, और इसमें भी कभी कभी भयभीत भी हो जाता है। लेकिन अगर भगवान केंद्र में है तो ये जो भाव जो होता है ये आध्यात्मिक हो जाता है। जैसे 33 भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार 33 संचारी भाव है, जैसे आध्यात्मिक सुख है, आध्यात्मिक दुख है, आध्यात्मिक क्रोध है, आध्यात्मिक भय भी है, लेकिन भगवान केंद्र में होना चाहिए। और जब भगवान केंद्र में है तो हम आगे जा सकते भक्ति मार्ग में और भगवान का स्वरूप और अपना स्वरूप अनुभव कर सकता है और परमानंद का अनुभव भी कर सकता है। लेकिन तो बहुत कुछ समस्या तो आ जाता है इस भौतिक जगत में रहते हुए विशेष करके, तो ये हमको सहन करना है। और जब इसमें लीन है, सेवा में लीन है, तो सहन शक्ति भी मिल सकते भगवान की कृपा से, जैसे प्रहलाद महाराज या हरिदास ठाकुर सहनशील जो हो जाता है जब भजन करता है। इसलिए धाम को भी जैसे प्रहलाद महाराज सब कुछ सहन करना चाहिए, लेकिन हमेशा भगवान का चिंतन करना चाहिए। स्मातव या सततम विष्णु विस्मातव या न जातुचित सर्वविधि निषेध सुर एतयोर किंकर रहा। ये परम पुराण के श्लोक है, इसमें उल्लेख किया है कि हमको हमेशा भगवान का स्मरण करना है और उनको कभी नहीं भूलना। ये दो नियम है, मतलब एक नियम है निषेध है, नियम है कि सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि हम हमेशा भगवान का स्मरण करना है। निषेध क्या है? भगवान को बोलना ना है। और लेकिन भगवान का स्मरण करना तो शुरुआत में मुश्किल है, इसलिए भगवान के बारे में श्रवण करना है और मंत्र के जप के माध्यम से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र के माध्यम से भगवान का स्मरण कर सकता है। जब अच्छा तरह से श्रवण किया है और उनकी गुणगान कर रहा है, तब उनकी कृपा से, भगवान की कृपा से उनका स्मरण भी कर सकता है निरंतर। हरे कृष्णा।